दिन भर 24 अगस्त दिन शुक्रवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। ऑस्ट्रेलिया में टर्नबुल ने गवाई प्रधानमंत्री की कुर्सी, नए पीएम मॉरिसन बोले पार्टी और देश को करेंगे एकजुट।
Our job is to ensure that we not only bring our party back together.
झारखंड में कथित गोकशी को लेकर पुलिस सख्त, पाकुड़ में 10 गिरफ्तार। और विवेचना में रेहान फजल से सुनिए 1947 से अब तक की अहम घटनाओं की सुरमई कहानी।
अभी आप 62 की लड़ाई हारे हैं, आपने इतने बड़े एक लीडर को पिछले साल खोया है और आप पाकिस्तान से फिर से लोहा ले रहे हैं और आप शायद निकल के आ रहे हैं उसमें, पाकिस्तान से एक कदम बेहतर निकल के आ रहे हैं।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, संदीप सोनी से। स्कॉट मॉरिसन को ऑस्ट्रेलिया का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। पार्टी के भीतर भारी विरोध का सामना कर रहे मैल्कम टर्नबुल को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पार्टी के भीतर हुए मतदान में सरकार में वित्त मंत्री रहे स्कॉट मॉरिसन और गृह मंत्री पीटर डटन के बीच मुकाबला हुआ। इस मतदान में मॉरिसन 40 के मुकाबले 45 वोटों से जीत गए। टर्नबुल पिछले एक दशक में ऑस्ट्रेलिया के ऐसे चौथे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें इस तरह बाहर किया गया है। भारतीय राजनीतिक दल कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की तुलना अरब जगत में मुस्लिम ब्रदरहुड से की है। लंदन में सामरिक अध्ययन संस्थान के छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा,
When the Congress Party comes to power, or the Samajwadi comes to power, or the BSP comes to power, or the DMK comes to power, they don't try to attack and capture India's institutions. What we're dealing with is a completely new idea. It's an old idea being reborn. And it's similar to the idea that exists in the Arab world with the Muslim Brotherhood.
जब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा या डीएमके सत्ता में आते हैं तो वो भारत की संस्थाओं पर हमला और उन पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन भारत में अब एक विचारधारा हर जगह कब्जा करने की कोशिश कर रही है। मैं इसकी तुलना अरब जगत में मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा से करता हूँ। एक विचारधारा बाकी सभी विचारधाराओं को खत्म कर देना चाहती है। ये थे लंदन में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के शब्द। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के इस बयान की कड़े शब्दों में आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा का कहना है,
राहुल जी आप हिंदुओं से इतनी घृणा क्यों करते हैं, इतनी घृणा क्यों? चंद दिनों पहले ये कहना कि हाँ हम मुसलमान पार्टी है, आज कह देना कि आरएसएस और बीजेपी मुस्लिम ब्रदरहुड है, इतनी घृणा आखिर क्यों? आप कहते हैं कि हम मुस्लिम ब्रदरहुड है। राहुल जी आप तो सोशल मीडिया बड़ा फॉलो करते हैं, बड़ा अपना फैसेट वैसेट डालते हैं सोशल मीडिया में, फोटो ऊपर नीचे दाएं बाएं देखकर फोटो डालते हैं। आप ये जरा सोशल मीडिया में देखिए, आरएसएस के लोग निक्कर पहनकर पानी में डूबकर केरला में अगर रिहैबिलिटेशन का काम और रिलीफ का काम कर रहे थे तो ये आतंकवादी थे, ये मुस्लिम ब्रदरहुड वाले थे।
ये थे बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दक्षिण पूर्व एशिया के 130 सांसदों ने रोहिंग्या समुदाय के लोगों के साथ म्यांमार के बर्ताव को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से आग्रह किया है कि इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत में ले जाया जाए। एक साल पहले सुरक्षा बलों ने 7,000 से ज्यादा रोहिंग्या लोगों को म्यांमार से बांग्लादेश खदेड़ दिया था। तब संयुक्त राष्ट्र ने इसे नस्ली सफाई की कोशिश बताया था। म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत का सदस्य नहीं है, लेकिन बांग्लादेश इसके प्रावधानों को मानता है। इस तरह रोहिंग्या लोगों का मामला अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत में उठाया जा सकता है। अमेरिका ने चीन में पत्रकारों के साथ कथित बर्ताव पर गहरी चिंता जताई है। अमेरिका की ओर से यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी नागरिक और पत्रकार मेघा राजगोपालन ने दावा किया है कि चीन ने पत्रकार के तौर पर उनके वीजे का नवीनीकरण करने से मना कर दिया। मेघा राजगोपालन ने चीन के शिनजियांग प्रांत में सुरक्षा बलों की दमन कार्रवाई के बारे में बड़े पैमाने पर रिपोर्टिंग की थी। अमेरिकी पत्रकार के वीजा मामले पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि विदेशी पत्रकारों को वीजा नियमों के मुताबिक दिया जाता है। यमन से खबरें मिल रही हैं कि एक मिसाइल हमले में बच्चों सहित कई आम लोग मारे गए हैं। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि यह हमला किसने किया है। इस तरह के हमलों के लिए हूती विद्रोही सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन को जिम्मेदार मानते हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। दिन भर की शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर एक और प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। लिबरल पार्टी में विरोध के चलते मैल्कम टर्नबुल को कुर्सी छोड़नी पड़ी। उनकी कुर्सी स्कॉट मॉरिसन ने संभाली है। मॉरिसन अभी तक वित्त मंत्री थे, वो टर्नबुल के सहयोगी के रूप में काम करते रहे थे। प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए उन्होंने पूर्व गृह मंत्री पीटर डटन को मात दी। प्रधानमंत्री बनने के बाद मॉरिसन ने पार्टी को एकजुट करने की बात की।
Our job is to ensure that we not only bring our party back together, which has been bruised and battered this week.
नए प्रधानमंत्री मॉरिसन कह रहे थे, हमारा काम ये सुनिश्चित करना है कि हम पार्टी को एकजुट करें। हम ये तय करें कि हमारा देश एकजुट रहे। हम ऑस्ट्रेलिया के लोगों में काफी लोच है। हमारी अर्थव्यवस्था की कामयाबी किसी भी देश के मुकाबले बेहतर है। ऑस्ट्रेलिया के लोगों को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो उनको आगे ले जाए। ये थे ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री मॉरिसन के शब्द। साल 2007 के बाद से ऑस्ट्रेलिया में कोई भी प्रधानमंत्री 3 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। मैल्कम टर्नबुल भी वक्त के पहले विदा हो गए। उनकी विदाई की वजह क्या रही, मैंने सवाल किया ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार पवन लूथरा से।
2015 के अंदर मैल्कम टर्नबुल ने टोनी एबट को हरा के लिबरल पार्टी की लीडरशिप ली। जो मैल्कम टर्नबुल है, ही कम्स फ्रॉम अ मॉडरेट लिबरल फैक्शन। तो पिछले 3 सालों में जब से मैल्कम टर्नबुल लीडर रहे हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर बने, वो कोई भी पॉलिसी चाहते थे, चाहे एनर्जी की आए, कोई भी ऐसी पॉलिसीज आए, तो उनको अपनी पार्टी के अंदर ही काफी लड़ाई होती थी। और इन मोस्ट केसेस बिकॉज वो काफी इस फैक्शन के आभारी थे, वो अपने पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे। तो पिछले 2-3 हफ्ते से मैल्कम टर्नबुल का मूड था कि कोई एनर्जी पॉलिसी चेंज करी जाए। मोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियंस वर थिंकिंग कि काफी अच्छा आइडिया है, लेकिन उनकी इंटरनल पार्टी ने उनको ये चेंजेस नहीं करने दी। जब उन्होंने अपनी ये पॉलिसी विड्रॉ करी, तो उनकी इंटरनल पार्टी ने कहा कि नहीं, ये अपनी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो उन्होंने फिर अपनी इंटरनल डिस्कशन से मंगलवार के दिन एक स्पिल मोशन, उसे कहते हैं यहाँ पर, उसकी उन्होंने एक दरखास्त की कि हमारे को सारों को मिलना चाहिए और इंटरनल वोटिंग करेंगे। मैल्कम टर्नबुल के खिलाफ हार्ड राइट के पीटर डटन खड़े हुए, किसको लीडर ऑफ द पार्टी एंड बाय डिफॉल्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री होना चाहिए। उसके अंदर मैल्कम टर्नबुल जीत गए, पीटर डटन हार गए। लेकिन जैसे ही वो हारे, पीटर डटन ने कहा नहीं, एक और स्पिल होगा और मैं चाहूंगा कि वो थर्सडे यानी कि आज के दिन स्पिल हो। तो पिछले 24 और 36 घंटे से पूरी पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पर स्टैंडस्टिल पे पहुंच गई। यहाँ पर सारे न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन स्टेशन, सारी ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन देख रही है कि कैनबरा में क्या हो रहा है। तो आज जब स्पिल मोशन हुआ, तो उससे पहले मैल्कम टर्नबुल ने कहा कि मैं इसके अंदर कॉन्टेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि आपको मेरे अंदर विश्वास नहीं है। पीटर डटन के खिलाफ स्कॉट मॉरिसन खड़े हुए और स्कॉट मॉरिसन जो कि एक मॉडरेट लिबरल है, उनको ज्यादा वोट मिले और ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर।
ये कहा जा रहा है कि हाल में जितने उपचुनाव वहां हुए हैं, उसमें टर्नबुल की पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी। ओपिनियन पोल में भी उनकी पार्टी को पिछड़ते दिखाया जा रहा था। क्या उनकी विदाई की एक वजह ये भी है?
देखिए, यहाँ पर जो पोलिंग होती है वो फॉर्टनाइटली यहाँ के मेजर न्यूज़पेपर्स करते हैं कि कौन सी पार्टी ज्यादा अच्छा कर रही है। पिछले 40 जो पोलिंग हुई है उसके अंदर विरोधी लेबर पार्टी की पोलिंग बेटर है, पर ज्यादा नहीं, 1-2% से ज्यादा थी। लेकिन मैल्कम टर्नबुल उनको हरा नहीं पा रहे थे इस पोलिंग में। रिसेंटली जब ये 40 पोल्स हो गई, तो उनकी पार्टी को थोड़ा सा लगा कि अब हमारे को अगले 9 महीने में इलेक्शंस में जाना है और हम हार सकते हैं। एक रीजन ये भी कहा जाता है कि दे कॉल्ड फॉर द स्पिल मोशन। लेकिन मैल्कम टर्नबुल ने जब आज अपनी फेवरेट स्पीच दी, तो उन्होंने कहा कि ये जो डिफरेंस था वो नैरो हो जा रहा था और अगर हमको थोड़ा सा टाइम देते तो मेरी जो पोलिंग हो रही थी, वी वुड हैव डन बेटर देन द अपोजिशन लेबर पार्टी।
स्कॉट मॉरिसन आए हैं, उन्होंने कहा है कि पार्टी को एकजुट करना इनकी प्राथमिकता है, लेकिन आपको क्या लगता है, 9 महीने में चुनाव होने हैं, मई में चुनाव होने हैं, दोबारा ये पार्टी सत्ता में आएगी, मॉरिसन प्राइम मिनिस्टर रह पाएंगे मई के बाद?
अगर मैं आज देखूं तो मेरे ख्याल से काफी मुश्किल होगा स्कॉट मॉरिसन को अगले इलेक्शन में जीतने के लिए, लेकिन जैसे कहते हैं कि 24 आवर्स इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, और अभी तो 9 महीने हैं।
जानकारी दे रहे थे सिडनी में मौजूद पत्रकार पवन लूथरा। अगली खबर भारत के राज्य झारखंड से। झारखंड के कुछ जिलों में 2 दिनों से तनाव बना हुआ है। तनाव की वजह है कथित गोकशी की खबरें। पाकुड़ समेत कुछ जिलों में गोकशी की शिकायत पर कार्रवाई करने गई पुलिस पर भीड़ ने कथित तौर पर हमला किया था। पाकुड़ में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजधानी रांची में भी गिरफ्तारियां हुई हैं। फिलहाल क्या स्थिति है बता रहे हैं रांची से नीरज सिन्हा।
राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक आरके मलिक ने बताया है कि सभी डीआईजी तथा जोनल आईजी को घटनाओं पर नजर रखने को कहा गया है।
सभी डीआईजी को एसपी को कहा है कि अपना आसूचना तंत्र जो है वो उसको मजबूत करें और लोगों पर कड़ी नजर रखें, और ऐसे जो उपद्रवी तत्व हैं या इस तरह के जो संदिग्ध आचरण के लोग हैं उन पर नियंत्रण रखें, उन पर कानूनी शिकंजा कसें ताकि इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो।
इस बीच राजधानी रांची में बड़ागाई बस्ती के रहने वाले एक बुजुर्ग बशीर अंसारी की गुरुवार को हुई गिरफ्तारी के बाद उनकी बड़ी बहू सैमून खातून ने बीबीसी से कहा है कि बेकसूर तथा बीमार व्यक्ति को पुलिस पकड़ कर ले गई, उन लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है, गरीब होने के नाते उनके पास मांस भिजवाया गया था।
वो गलत काम नहीं था, कोई गरीब को बोला था कि बांट उठ के यहाँ पर खा जाने के लिए और सबको मोहल्ला में बांट देने के लिए, तो वही वाला सिरनी का चीज था।
जबकि बशीर अंसारी की दूसरी बहू बेबी खातून का कहना है,
टेम्पो को जबरदस्ती साइड करके और बोला कि यहाँ साइड कीजिए, उसके बाद मेरा ससुर से चाबी जबरदस्ती लेके और उन लोग अपने सामान के ढोकर ले गए। हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है, हम लोग के पास कुछ नहीं है, हम लोग का कल कुछ नहीं खाए पिए दिन रात, बच्चा उच्चा सब स्कूल नहीं गए।
इससे पहले 22 अगस्त यानी बकरीद के दिन पाकुड़ के डांगा पाड़े बस्ती में गोकशी की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस पर उग्र भीड़ ने हमला कर दिया था। इस घटना में पुलिस के 6 जवान समेत 16 लोग घायल हुए हैं। पुलिस का दावा है कि भीड़ ने पाकिस्तान के नारे लगाए तथा झंडे भी लहराए। यह जगह झारखंड की राजधानी रांची से करीब 450 किलोमीटर दूर बंगाल की सीमा पर है। पुलिस ने जिन 10 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें 2 लोग पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इस बीच दुमका के डीआईजी राजकुमार लकड़ा ने बताया है कि पूरे इलाके में पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती कर दी गई है। बकरीद के ही दिन संताल परगना में राजमहल थाना क्षेत्र के मुगलानी चक में कथित तौर पर पशुओं की हत्या करने की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस को भारी विरोध का सामना करना पड़ा था, जबकि गढ़वा जिले के टिकुला डी गांव में पुलिस को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया था। गुरुवार को ही बोकारो के चंदन क्यारी थाना क्षेत्र में कथित तौर पर गोमांस तथा जानवरों की खाल बरामद किए जाने के बाद एक मौलाना समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता रहे हैं बोकारो के SP कार्तिक S।
जनता ही लोग जो है उसमें अचानक लगा और टेम्पो में प्रतिबंधित मांस वगैरह रखा हुआ था, जो ड्राइवर है उन लोगों को हम लोग पकड़े, पूछताछ करके आगे अनुसंधान के क्रम में जहाँ से लेके आ रहा था तो उधर से अरेस्टिंग भी किए।
गौरतलब है कि झारखंड में गोहत्या और गोमांस के कारोबार पर प्रतिबंध है। बकरीद से ठीक पहले राज्य के गृह सचिव ने सभी पुलिस अधीक्षकों से निगरानी रखने तथा संभावित टकराव रोकने की ताकीद की थी। फिलहाल कई जगहों पर तनाव है पर हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। नीरज सिन्हा, BBC रांची।
प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में क्यों चूक जाती हैं सरकारें? आपदा उत्तराखंड में हो या केरल में, प्रशासन क्यों हो जाता है बार बार लाचार? क्या आधी अधूरी तैयारियां और लापरवाह सरकारी रवैया है इसका जिम्मेदार? यही है इस बार BBC इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 25 अगस्त शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
और अब वक्त है विवेचना का। हाल में हमारी पुरानी साथी सीमा चिश्ती, सुशांत सिंह और अंकुर भारद्वाज की एक किताब प्रकाशित हुई है, नोट बाय नोट द इंडियन स्टोरी। इसमें उन्होंने 1947 से 2017 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को उस साल के एक मशहूर हिंदी फिल्मी गाने के साथ जोड़ा है। किस तरह इन गानों ने उस समय के मूड को चित्रित किया है बता रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी रेहान फजल।
कहा जाता है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास में हिंदी फिल्मी गानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत जैसे देश में हर काल, हर भावना और हर मौके के लिए गीत लिखे गए हैं। सीमा चिश्ती, सुशांत सिंह और अंकुर भारद्वाज ने 1947 से 2017 तक जो कुछ भारत में घटित हुआ उसको जोड़ने की कोशिश की है इन गीतों से अपनी किताब नोट बाई नोट द इंडिया स्टोरी में। सीमा चिश्ती बताती हैं।
एक अवेयरनेस था हमको कि इस वक्त जो भारतीय हैं उसमें ज़्यादातर लोग उस तरह के हैं जो बहुत यंग हैं, और बार बार ये सुनने में आता था कि भाई 70 साल में कुछ नहीं हुआ। हम सब लोग एक तरह से फैंस ऑफ इंडिया हैं, फैंस ऑफ द इंडियन आइडिया, जो हर तरह की चीज़, हर मिजाज को, हर तरह के एक इंसान को साथ लाता है ये प्रोजेक्ट। तो सोचा कि क्यों ना 70 साल की कहानी बयान की जाए।
1947 का साल, अंग्रेज अपने बोरिए बिस्तर के साथ वापस विलायत जा रहे थे। नेहरू दिल्ली में थे और महात्मा गांधी नोआखाली में हिंदू मुसलमान दंगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। दोनों एक दूसरे से काफी दूर थे, लेकिन दोनों ही अपने अपने तरीके से भारत के आइडिया को जीवित रखने की कोशिश कर रहे थे। पहले से तय नहीं था कि भारत 15 अगस्त को ही आजाद होगा, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन यही तारीख चुनते हैं। वजह, 2 साल पहले इसी दिन जापान ने उनके सामने आत्मसमर्पण किया था। सुशांत सिंह कहते हैं,
देखिए ओरिजिनल डेट जो थी वो तो 30 जून 1948 की क्लीमेंट एटली ने दी थी, पर लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि उन्होंने सिंगापुर में साउथ ईस्ट एशियन कमांड की सरेंडर जो थी जापान की, वो ली थी 15 अगस्त 1945 को, और वो उसको कमेमोरेट करने के लिए और उस दिन को आगे करने के लिए वो इसको 11 महीने पीछे ले आए। खास बात यह है कि उन्होंने उसको जस्टिफाई किया, उन्होंने कहा कि भाई अगर इतनी जल्दी आज़ादी नहीं देते तो जैसा कि राजा जी ने बाद में कहा, शायद देने को आजादी होती ही नहीं।
इन सब घटनाओं को इन लेखकों ने जोड़ा है फिल्म दर्द के गाने अफसाना लिख रही हूं से। अंकुर भारद्वाज बताते हैं,
एक नई यात्रा शुरू कर रहा था, एक नया देश, तो दुख तो था क्योंकि विभाजन हो गया था, लेकिन एक रोमांचक माहौल भी था उसके हिसाब से। एक जो नई कहानी लिखने के लिए देश जा रहा था उसके साथ में ये गाना बिल्कुल सटीक बैठता है कि एक नया अफसाना शुरू करने जा रहे हैं लोग, एक नया देश बन रहा है, और एक एक, एक नई उमंग थी शायद 1947 में दुख के साथ में।
'51 का साल भारत में पहले आम चुनाव और पहली पंचवर्षीय योजना का साल था। खड़गपुर में पहली IIT का उद्घाटन मौलाना आजाद ने किया था और भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। इन लेखकों ने इस साल को जोड़ा है राज कपूर की फिल्म आवारा के गाने आवारा हूं से, जो कि उस समय के सोवियत संघ में भारत से भी ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। राज कपूर ने एक बार BBC से बात करते हुए कहा था,
आवारा में उन्होंने एक चीज पाई, एक ऐसा जज्बात जो उस वक्त हमारे समाजवाद में एक तब्दीली पैदा हो रही थी। अमीरी गरीबी, छूत छात, भेदभाव, इन चीजों की हल्की हल्की दीवारें टूटना शुरू हो रही थीं। तब वहां उन्होंने एक आवारा देखा। शक्ल सूरत उसकी कुछ राज कपूर जैसी थी, लेकिन दिल उसका आवाम का था, उस हिंदुस्तान के नौजवान का था, आज तक उसी प्यार से धड़कता है। दरअसल उन्होंने राज कपूर को नहीं अपनाया, उस हिंदुस्तान के नौजवान को अपनाया था, जिसका दिल बार बार यही कहता था कि आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर अनजान नगर सुनसान डगर का प्यारा हूँ आवारा।
घर बार नहीं संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, सुनसान नगर अनजान नगर का प्यारा हूँ।
1962 में पहली बार चुनाव में मतदाताओं की उंगलियों पर देर से मिटने वाली स्याही लगाई गई थी। चीन ने भारत पर हमला किया और इस सैनिक हार ने भारत के लोगों के बीच नेहरू के रुतबे को हिलाकर रख दिया। नेहरू ने देश को संबोधित कर इस सैनिक पराजय को स्वीकार किया।
आज कल की खबरें आई थी, वहां पूर्वी सीमा प्रांत में والونگ ایک جگہ ہے، اس کو ہماری فوج کو چھوڑنا پڑا. سیلا ایک پاس ہے، پہاڑ ہے بونڈیلا کے اوپر، اور بونڈیلا بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. رنج ہوا اس کو سن کر، رنج ہوا کہ ہماری فوج کو ہٹنا پڑا وہاں سے. لیکن رنج ہونے سے اور بھی ہمارا ارادہ پکا ہوا، اس سے ہم ڈر جائیں اور گھبرا جائیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے.
1962 کو جوڑا گیا فلم 20 سال بعد کے شکیل بدایوں کے لکھے گانے دشمن ہیں ہزاروں یہاں جان کے سے. '65 میں بھارت نے 3 سال پہلے چین کے ہاتھوں ہوئی ہار کے غم کو بہت حد تک بھلا دیا. پاکستان کی سینا پر بھارتیہ فوج بھاری ضرور پڑی، لیکن اسے نرنائک جیت نہیں ملی. اور تو اور، انہوں نے اس سمے یدھ ویرام سویکار کر لیا جب پاکستان ہار کے کگار پر تھا.
جنرل جے این چودھری جو اس وقت بھارت کے سینا ادھیکش تھے، جب ان کو لال بہادر شاستری جی نے بلایا اور پوچھا کہ بھائی کیا ہم اگلی لڑائی آگے چالو رکھیں جس سے کہ پاکستان بالکل اپنے گھٹنے ٹیک دے، تو انہوں نے اس وقت ایک دم جواب دیا کہ نہیں، کیونکہ ہمارے پاس ٹینکوں کے اسپیئرز اور ایمونیشن کی بہت کمی ہے اور صرف 15% اسٹاک بچا ہے، اس لیے آپ اگر موقع ملے تو سیز فائر کر دیں. تو اس لیے جو اس وقت سوویت انٹروینشن تھا سیز فائر کرنے کا، وہ شاستری جی ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور بعد میں یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ جو اسٹیٹسٹکس تھی، جو ڈیٹا تھا، جو فگر تھا، پوری طرح سے غلط تھا. اور بلکہ پاکستانی سینا کی استھتی اس وقت بہت زیادہ خراب تھی، نہ ان کے پاس اسپیئرز تھے، نہ ٹینکس تھے، اور ایمونیشن کی بھی بہت بڑی سمسیا تھی. اور اگر کچھ دن اور لڑائی چلتی تو پاکستان پوری طرح سے اپنے گھٹنے ٹیک دیتا.
1965 کو ان لیکھکوں نے جوڑا شیلیندر کے لکھے گائیڈ فلم کے مشہور گانے کانٹوں سے کھینچ کے یہ آنچل سے.
گائیڈ ایک قسم سے کہا جائے تو ایس ڈی برمن، شیلیندر، لتا منگیشکر، محمد رفیع، ان کے ٹیلنٹ کی شاید پراکاشٹھا تھی. آج تک کی جتنی بھی فلموں کی البمز رہی ہوں گی ان میں شاید سب سے اچھے جو البم ہوں گے ان میں سے ایک یہ البم تھی گائیڈ کی. دیش کی جو گھٹنائیں اس سال گھٹ رہی تھی ان سے کتنا ملتا جلتا گانا ہے. دیکھیے وہ بات کر رہے ہیں کہ کیسے مشکلوں سے نکل کے آئی ہیں اور وہ دوبارہ سے جیون جینا چاہتی ہیں. ابھی آپ 62 کی لڑائی ہارے ہیں، آپ نے اتنے بڑے ایک لیڈر کو پچھلے سال کھویا ہے، اور آپ پاکستان سے پھر سے لوہا لے رہے ہیں، اور آپ شاید نکل کے آ رہے ہیں اس میں، پاکستان سے ایک قدم بہتر نکل کے آ رہے ہیں.
'71 میں اندرا گاندھی نے غریبی ہٹاؤ کے نعرے پر عام چناؤ جیتا. بنگلہ دیش سے 1 کروڑ سے بھی ادھک شرنارتھی بھارت میں آئے اور ایک نئے دیش بنگلہ دیش کا جنم ہوا.
1971 پورے اپ مہادویپ کے لیے بڑا ہی تاریخی سال تھا اور شاید کبھی بھولا نہیں جائے گا. بنگلہ دیش کا ایک طرح سے کریٹ ہوا، سنیل گاوسکر تو خیر تھے ہی، کرکٹ میں بھی انڈیا کا اٹھنا. تو بہت ہی دلچسپ سال جس میں جو بھی تمام ایونٹس ہوئے وہ ایک چیلنج کے روپ میں بھی سامنے پھر بھارت کے آئے. اور اندرا گاندھی نے جس طرح سے سویپ کیا الیکشن، غریبی ہٹاؤ کا ان کا نعرہ، تو کئی چیزیں ایسی تھیں 1971 میں جو ابھی بھی گونجتی ہیں ہمارے اتہاس میں اور ہمارے پریزنٹ کا بھی وہ آج حصہ ہیں. کافی فلسفانہ گانا چنا ہم لوگوں نے، زندگی کیسی ہے پہیلی.
زندگی کیسی ہے پہیلی، کبھی تو ہنسائے کبھی یہ رولا.
1975 میں اندرا گاندھی نے ایمرجنسی لگائی اور وپکش کے ہر چھوٹے بڑے نیتا کو جیل میں بند کر دیا گیا.
1975 میں جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان کی جینیسس جو ہے وہ اس سے پہلے کے کچھ سالوں میں ہے. 1973 کا جو آئل شاک ہے، اکانومی کی حالت کافی خراب ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے گجرات میں جو نو نرمان آندولن ہوتا ہے، بہار میں جو آندولن ہوتا ہے، اس آندولن کے پشچات 1975 میں جب کورٹ کا جو آرڈر آتا ہے اندرا گاندھی کے خلاف کہ 1971 میں ان کی لوک سبھا چناؤ میں رائے بریلی سے جیت میں غلط سادھنوں کا اپیوگ ہوا، اس کے پشچات ایمرجنسی لگائی جاتی ہے. होती है, पर जो गाना है आंधी का, आंधी फिल्म तो इमरजेंसी लगने से बहुत पहले रिलीज हो गई थी, पर गुजरात के चुनावों के दौरान विपक्षी पार्टियों ने प्रचार के दौरान ये कहा, क्योंकि आंधी में सुचित्रा सेन का जो कैरेक्टर है वो एक पॉलिटिशियन का कैरेक्टर है और वो उसमें सिगरेट भी पीती हैं और उसमें वो शराब भी पीती हैं, कहा कि भाई ये देखिए यही इंदिरा गांधी हैं, ये इस तरह से शराब पीती हैं और सिगरेट पीती हैं, देखिए ये सब कुछ सेम है। उसके पश्चात गुलजार ने फिल्म में अमेंडमेंट किया और उन्होंने फिल्म के अंदर एक सीन डाला जिसमें कि फिल्म में सुचित्रा सेन का जो कैरेक्टर है वो मिसेस गांधी के एक चित्र को देखता है और उसके बारे में तारीफ करता है, बताने के लिए कि भाई देखिए ये इन पर बेस्ड नहीं है।
बाबरी मस्जिद के विध्वंस का वर्ष, मस्जिद तोड़े जाने के बाद हुए दंगों में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। नरसिम्हा राव अपने शासन पर लगे इस दाग से कभी उबर नहीं पाए।
भारत एक अजीब सी जगह पे पहुंच गया था जहाँ पे हम देख रहे थे कि एक मस्जिद के होने पे या एक मंदिर के निर्माण के लिए हम आपस में लड़ रहे थे। तो इस गाने में एक लाइन है कि आ गए हम कहाँ ए मेरी जाने जा, तो ये लाइन शायद भारत के बारे में भी बात करती थी। भारत भी तो एक अजीब सी जगह पर पहुंच गया था जहाँ पे आपस में ही समाज के अंदर लड़ाई हो रही थी और ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये सुलझेगा कैसे, तो इसलिए शायद ये गाना सटीक बैठता है।
दो हजार आठ में यूपीए सरकार को पहले अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। 26 नवंबर को रात 8 बजे लश्करे तैयबा के 10 चरमपंथियों ने मुंबई के ताजमहल होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट होटल और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर हमला किया जिसमें करीब 165 लोग मारे गए।
मुंबई टेरर अटैक के पश्चात भी भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध नहीं हुआ क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, और ये बात अगर आप आज 10 साल हो गए हैं इस बात को, ये बात समझने वाली बात है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक्ट किया, क्योंकि अगर दो न्यूक्लियर आर्म्ड वेपन्स कंट्रीज अगर जाते युद्ध के लिए तो आप सोच सकते हैं कि उसका स्वरूप क्या हो सकता था।
2014 में वो हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन आने वाले हैं के नारे पर अपनी पार्टी के लिए लोकसभा में पूर्ण बहुमत हासिल किया।
1984 में जबकि वो केवल 2 सांसदों के साथ संसद में उपस्थित थी और 2014 में अकेले अपने दम पर 282 सीटें जीत करके सरकार बनाने में कामयाब रही। 2014 वो साल था जब नरेंद्र मोदी इस देश की हर समस्या का समाधान थे, इस देश की सब आशाओं के दीपक थे, और वो हर व्यक्ति के लिए जो इस देश का एक उज्जवल भविष्य देखना चाहता था, जो अच्छे दिन पाना चाहता था, उसका वो उत्तर सबके सामने दे रहे थे।
रेहान फतल, बीबीसी दिल्ली।
विवेचना पर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। और आपको बता दें कि एशियाड में आज भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। टेनिस के पुरुष डबल्स में भारत को रोहन बोपन्ना और दिविज शरण ने गोल्ड दिलाया। रोइंग यानी नौकायन में भी भारत ने स्वर्ण जीता। अब भारत के खाते में 6 स्वर्ण समेत कुल 25 पदक हैं। और चलते चलते मुख्य समाचार संदीप सोनी से।
बीबीसी समाचार। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की तुलना अरब जगत में मुस्लिम ब्रदरहुड से की है। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के इस बयान की कड़े शब्दों में आलोचना की है। स्कॉट मॉरिसन को ऑस्ट्रेलिया का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। पार्टी के भीतर भारी विरोध का सामना कर रहे मेलकम टर्नबुल को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यमन से खबरें मिल रही हैं कि एक मिसाइल हमले में बच्चों सहित कई आम लोग मारे गए हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के 130 सांसदों ने रोहिंग्या समुदाय के लोगों के साथ म्यांमार के बर्ताव को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से आग्रह किया है कि इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत में ले जाया जाए। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे देवाशीष कुमार। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है बीबीसी हिंदी .com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।